ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಯ ದಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಹಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಖಬರೆ ದೇ ರಹಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಸೆ ಲಗ್ ರಹಾ ಹೈ ಕಿ ವಿನಾಶ್ ಕಿ ತಯಾರಿಯಾ ಬಡಿ ಜೋರ್ ಸೆ ಚಲ್ ರಹೀ ಹೈ. ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಿ ತಯಾರಿಯಾ ಥೋಡಿ ಧೀಮಿ ಸಿ ಲಗ್ ರಹೀ ಹೈ. ಔರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಕಿಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ವಿಘ್ನ ಆ ರಹಾ ಹೈ. ಸಭಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೋ ಪತಾ ಹೈ, ಬಾಬಾ ಮುರಲಿ ಮೇ ಭೀ ಸುನಾತೆ ಹೈ, ವ್ಯರ್ಥ ಕಾ ವಿಘ್ನ ಬಹುತ್ ಅಧಿಕ ಹೈ, ಬಹುತೋ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಹೈ. आइए इस व्यर्थ से मुक्त बन अपने आप को समर्थ कैसे बनाए इसकी विधि के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे सामने उपस्थित है जापान से आए हुए आदरणीय रजनी दीदी जी. दीदी जी, आपका सभा में बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. आपने बचपन में ही दिल्ली में यह ज्ञान प्राप्त किया और तब से लेकर पूरे परिवार सहित आप ज्ञान में चल रहे हैं. 1979 में आप विदेश सेवा में गए, तब से लेकर आपने विदेश में अनेक स्थानों पर सेवाएं दी, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि. अनेक स्थानों पर सेवाएं देते हुए वर्तमान समय आप जापान, फिलीपींस एवं आसपास के क्षेत्र का कारोबार सुचारू रूप से संभाल रहे हैं. आप एक कुशल वक्ता है जिन्होंने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित किया है. मेरा खुद का अनुभव दीदी जी के बारे में शेयर करना चाहूंगी. सामने वाले की स्थिति व परिस्थिति को बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने आप समझ लेती है. जैसे बाबा सब कुछ जानता है, हम कहे या न कहे, तो दीदी जी में ये खूबी हमने देखी है. तो आइए ऐसे बाबा के विशेष रतन द्वारा हम क्लास सुनेंगे, व्यर्थ से मुक्त बन समर्थ कैसे बने. आदरणीय रजनी दीदी जी.
थैंक यू नीलमा बेन. ओम शांति. तो आज हम सब सुनेंगे कि व्यर्थ से मुक्ति कैसे हो और समर्थ भी बनना है. तो ये बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहना शुरू किया, बहुत सालों से बाबा कह रहे, क्योंकि बाबा को पता तो है हम कलयुग में रहते हैं, कई बातें आती हैं और कोई ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं आती हैं जीवन में, दुख आता है तो मन के विचार चल पड़ते हैं, क्योंकि मन का काम है सोचना. तो वो किस दिशा में चला जाता है, क्या क्या सोच के बैठ जाता है, कहाँ फंस जाता है, कहाँ कोई प्रकार की समझ नहीं आती है, ये बाबा को पता है. तो इसलिए बाबा हम सबको यही चाहते हैं कि संगम युग पर ये एक विशेषता हम धारण कर लें. कौन सी? व्यर्थ से मुक्ति. तो चार कारण हैं जिससे व्यर्थ मन में चलता है. ऐसे तो हम सभी को पता है, क्योंकि सब अनुभवी बैठे हैं ना सभी यहाँ, सबको पता है ना व्यर्थ क्या है. तो व्यर्थ का स्रोत क्या है, कहाँ से ये व्यर्थ चालू हो जाता है, बाबा ने मूल्यों में भी बताया है. पहला कारण है देह का अभिमान. ये शरीर है ना, इसका अभिमान कोई कम नहीं है. द्वापर युग से ये हमको अभिमान है कि हम शरीर हैं, आत्मा को भूल गए थे. तो पहला कारण है हमारा देह का अभिमान. उसमें भी बहुत सूक्ष्म चीज है देह का अभिमान. देह की आप सेवा करो, उसको रेस्ट दो, खिलाओ, लेकिन देह का अभिमान का मतलब बाबा ये कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत बढ़िया जाति का हूं, मैं बहुत बढ़िया कुल का हूं, मैं बहुत अच्छा समझदार हूं, ये जो अभिमान है ना हमको, ये हमारे अंदर व्यर्थ पैदा करता है अभिमान। देह को यूज करना अलग बात है, उसका अभिमान करना, उसके रोल में चले जाना, वो हमको व्यर्थ करा देता है। दूसरा कारण है, जब भी सीन आता है हमारे जीवन में ड्रामा का, हम समझ नहीं पाते हैं तो क्यों और क्या, ये दूसरा कारण है। क्या कारण है? क्यों हुआ, किसने किया, क्या हुआ, एकदम मन जो है व्यर्थ में चला जाता है। चला जाता है या नहीं? आप हाथ खड़ा करो, ऐसे हम सोचते हैं ना। तो ये क्या और क्यों, जब मन में आप प्रश्न में चले जाएंगे तो कहां जा रहा है मन? व्यर्थ में जा रहा है। तो ब्रह्मा बाबा की एक बात बताते हैं, ब्रह्मा बाबा ने हमेशा अपने मन को, ये जो है ना क्या और क्यों, किसने, कब, ये बातों में बाबा गया ही नहीं। बाबा ने हमेशा अपने मन को कहां रखा था? एकदम ड्रामा की ढाल पे रखा था, कि ड्रामा की ढाल में रहने से आपका मन क्या क्यों में नहीं जाएगा। तो ये कारण है दूसरा, कि जो हम प्रश्न पूछने लग जाते हैं क्या क्यों, उसके कारण भी हमारा मन जो है व्यर्थ में जाता है। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ। तीसरा कारण है, वो तो हम सब जानते हैं, हमारे पुराने संस्कार, आदतें। कितने हैं पुराने संस्कार? ईर्ष्या, द्वेष, विरोध की भावना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दूसरों के अवगुण देखना और अपने को सिद्ध करना। ये सारे जो हैं आत्मा के शूद्रपन के संस्कार हैं, अपवित्रता के संस्कार हैं। क्योंकि अभी हम ब्राह्मण तो भी बने, लेकिन इतने जन्म हम लेते आए, कौन सी जाति में थे, कुल में थे, कौन से देश में थे, क्या करते थे, क्या पढ़ाई की, फिल्म्स देखी, नॉवल पढ़े, क्या क्या नहीं किया दुनिया में, समाज में, रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, जिसने जो सिखाया वो सीख लिया था, अभिमान की आदतें पड़ गई। तो हमारे अंदर जो है पुराने संस्कार हैं, तो वो पुराने संस्कार हमारे एक या दो या तीन तो होंगे। कई बार क्रोध करना ये पुराना संस्कार है ना, लोभ करना पुराना संस्कार है, ईर्ष्या करना पुराना संस्कार है, जिद करना पुराना संस्कार है। तो ये पुराने संस्कार को हम देखें कि कौन कौन से हमारे अंदर शूद्रपन के संस्कार हैं। शूद्र माना जो हमारे मन का विचार है वो बहुत बहुत नीच क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी नहीं है, अच्छा सोच नहीं है, दूसरे के कल्याण का सोच नहीं है, उनकी टांग खींचने का सोच है, गिराने का उसको सोच है, अपवित्र है ना मन में। तो ये एक पुराना संस्कार भी हमको देह के अभिमान में ले आता है और साथ साथ हमारे व्यर्थ संकल्प पैदा करता है। चौथा कारण वो है मैं और मेरा लगाव। मेरापन कितना है आज सारी दुनिया का देखो ना, घर से मोह, बच्चों से मोह, मेरा ममत्व है, लगाव है, उसके कारण व्यर्थ विचार चलेंगे ना, ये मेरी चीज है इसको हाथ नहीं लगाओ, ये मेरी धरती है इसके अंदर नहीं आओ, ये मेरा आकाश है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे, कितने लगाव में है इंसान, कितना उसको व्यर्थ विचार चलेंगे। तो आप समझ रहे हैं मैं और मेरा, मैं ममत्व है, लगाव है, संबंधों में, व्यक्तियों में, अपने शरीर में, वस्तुओं में, वैभव में, कितने प्रकार के लगाव हैं, और उसके कारण व्यर्थ विचार भी चलते हैं। चलते हैं या नहीं चलते? हाँ, क्योंकि आत्मा उसमें लिप्त हो गई है ना, मैं और मेरे में। तो ये जो हमारे व्यर्थ विचार चलने के चार कारण आपने सुने, पहला कौन सा सुना? देह का अभिमान। तो हम सभी को है देह का अभिमान, अभी है, व्यर्थ विचार चलते हैं अभिमान के कारण। दूसरा कौन सा था? हाँ, दूसरा है देह अभिमान, तो पहला था। दूसरा कौन सा है? कि हम लोगों के अंदर और भी है, मैं हो, ममत्व भी है, पुराने संस्कार भी हैं, और क्यों क्या भी है। तो ये चार कारण हमको हमारे मन की बुद्धि को विस्तार में ले जाते हैं, सार में नहीं ले आते, विस्तार में चले जाती है, और बुद्धि क्या हो जाती है? भटकनी शुरू हो जाती है। जब इसकी जो बुद्धि पर बहुत असर पड़ता है ना व्यर्थ संकल्प का, कैसे पता चले आपको व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं? जब आपके अंदर जो आपकी फीलिंग्स हैं वो भारी हो जाती है, जैसे कोई भारी सामान है हम उठा नहीं सकते हैं, ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे अंदर भारीपन आ जाता है। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भारीपन आ गया तो हम खुश नहीं रहते हैं, हल्के नहीं रहते हैं, वो भारी भारी चलते रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, कोई किसी ने कुछ बात की चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उल्टा उत्तर देंगे उसको, ये क्या है, भारीपन है या नहीं है। तो व्यर्थ विचार से हमारे अंदर रिएक्शन कौन सा होगा? भारीपन का। हम जैसे बोझ उठा के चल रहे हैं, असंतुष्ट हैं हम अपने आध्यात्मिक जीवन में, इससे पता चलता है कि व्यर्थ विचार चल रहे हैं, और दूसरा बुद्धि भटक रही है। हाँ, बुद्धि कहाँ कहाँ जाके किसी में फंसी हुई है। लेकिन अब निकलना चाहते हो आप इससे? हाँ, सभी चाहते हैं व्यर्थ से कैसे निकलें, हाथ खड़ा करो जो चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन कैसे निकलेंगे? उसके लिए हम योग तो करते ही हैं, बाबा को याद तो करते ही हैं, लेकिन सारे दिन के लिए कई प्रकार के हमको स्मृति चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी आपके अंदर समर्थि आएगी, पावर आएगी। तो व्यर्थ के कारण हमने समझे, उसकी निशानी भी समझी, भारीपन, और उससे नुकसान क्या होता है, क्यों हम छूटना चाहते हैं? कारण ये है कि सफलता नहीं मिलती है जीवन में, हर प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं जीवन में। हम सुबह उठते हैं, कहते हैं हम अच्छा अमृत वेला करेंगे, अच्छी तरह मुरली सुनेंगे, हम औरों के अवगुण नहीं देखेंगे, और सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, फिर कभी गुस्सा आ जाएगा, कभी आलस्य आ जाएगा, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो सफलता नहीं मिलती है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। और साथ साथ जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ भी नहीं बनती है तो सहयोग नहीं मिलेगा ना, तो बाधाएं आती रहेंगी हमारे जीवन में, सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ से छूटो अभी। तो उसके लिए हम क्या क्या करें? तो चार प्रकार की स्मृति रखो। पहली स्मृति ये रखो, हाँ, पहली स्मृति क्या रखेंगे? इस दुनिया में हम मेहमान हैं। मेहमान समझते हैं, आप किसी के घर में जाते हो 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए मेहमान समझ के, आपको कोई प्रकार का लगाव होता है वहां? नहीं होता है ना, हम कहेंगे मेहमान हैं हम, 2 घंटे के लिए आए हैं। तो इस दुनिया में हम क्या हैं? क्या हैं हम? मेहमान हैं। कौन से मेहमान हैं हम? कौन से मेहमान? बाबा कहते हैं इस शरीर में आत्मा मेहमान है, और नाटक बजाने आई, अपना ड्रामा में पार्ट खेलने आई है नाटक में। तो हम हो गए मेहमान। मेहमान जब जाता है जिसके घर, कुछ समय बैठ के आ जाता है, उसको अपना घर याद रहता है। तो ये स्मृति हम रखें कि मैं मेहमान हूं। तो क्या होगा, हम किसी के साथ लगाव में नहीं आएंगे और शरीर का भी लगाव नहीं होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो मेहमान रहता है वो सदा क्या बनता है, महान बनता है। सुना हुआ है ना ये बाबा के स्लोगन, जो मेहमान है वो सदा महान और उसकी महिमा होती है, क्योंकि लगाव नहीं है। लगाव होगा तो कौन महिमा करेगा, कहेगा अरे इतना सारा पैसा कमाया, दान नहीं करके गया, कुछ करके नहीं गया, क्योंकि उसको लगाव था। होता है ना ऐसे, तो उसकी महिमा तो नहीं होती है। तो जो मैं अपने को मेहमान समझता है उसकी महत्व नहीं होती है, इसलिए वो महान कहलाता है। बाबा कहते हैं ये सदा याद रखो, स्मृति है व्यर्थ से छूटने की, मोह माया से छूटने की। दूसरा बाबा ये कहता है बहुत अच्छी बात कि बिंदु को याद रखो। बिंदु कौन है, कितने बिंदु हैं, कितने हैं, तीन, कौन कौन से, ये सबको याद है। हाँ, ये कैसे मदद करता है ये स्मृति बिंदुओं की। पहला तो आप अपने को ऊर्जावान आत्मा समझो, बिंदु ज्योति पॉइंट। दूसरा शिव बाबा भी ज्योति बिंदु सागर है, वो सभी प्रकार के अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी सॉल्यूशंस वो बाबा के पास है, इसलिए हम बाबा को याद करते हैं। एक बहन थी, उसने हमको अपना अनुभव अच्छा सुनाया, मेरा भी अनुभव है, मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बहन थी, उसको कुछ कानून के कारण कुछ प्रॉब्लम आई, समस्या आई उसके सेंटर पर। तो उसने बाबा को कहा, बाबा मैं एक पत्र लिख देती हूँ आपको कि क्या क्या समस्याएं हैं और आप ही हो जो हम इसका समाधान करेंगे। कितना निश्चय चाहिए बाबा पर है। तो उसने लिख दिया और उसमें डाल दिया, जो बाबा का कमरा है ना वहां पर लेटर बॉक्स है, वहां डाल दिया। कहा बाबा अभी मैं बिंदु बन के आप बिंदु को मैं याद करती हूँ। उसने 8 घंटे बाबा को याद किया। अब देखो कुछ दिन के बाद बाबा ने उसकी सारी समस्या दूर कर दी। कैसे दूर हुई पता है, चला आपको, ये हम तो यहां बैठे थे और बाबा कहां, कैसे दूसरे देश में जाकर किसी आत्मा को अच्छा विचार दे करके बाबा के कार्य में सहयोगी बनवाया है। और ये आत्मा किसको याद कर रही है, बाबा को। आप करते हो ऐसा, बाबा को याद करो और बाबा किसी को टच करेगा, फिर बाबा अपना कार्य कराएगा, लेकिन मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है। फिर बाबा को नहीं कहना अच्छा हुआ या नहीं, बाबा आपने कर दिया काम या नहीं, बाबा से नहीं पूछना। एक बार बाबा को कह दिया फिर बाबा कराएगा। है अनुभव आप सबको, किसको है ये अनुभव। तो ये बहन ने कैसे किया, लेटर लिख दिया और लेटर बॉक्स में डाल दिया, फिर योग किया, बाबा को याद किया, बिंदु बाबा को, और बिंदु समझ के, मतलब विस्तार में नहीं जाना है आपको, कुछ नहीं और सोचना है, दे दिया ना बाबा को, ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है बाबा में। फिर बाबा जो है किसी ना किसी आत्मा को टच करेगा, फिर वो आत्मा आपके पास आएगी, कहेगी मैं मदद करना चाहता हूं। वो जो समस्या थी वो बाबा कैसे सूक्ष्म टच करता है और कैसे कराता है। ये अनुभव आप इकट्ठे करो अपने जीवन में, बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करना। ऐसे मेरा भी एक अनुभव है, मैं जब जापान में थी तो बाबा को मिली एक बार, तो बाबा ने कहा आपको क्या तकलीफ है। मैंने कहा बाबा मेरे को भाषा नहीं आती है। तो बाबा ने कहा ठीक हो जाएगा, जाओ वापस। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो मैं वापस गई तो बाबा ने समझ लिया इस बच्ची को भाषा नहीं आती है। तो बाबा ने क्या किया, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सेंटर पे थी। तो एक युगल आए, वो युगल पैसे लेके आ गए, कहा ये पैसे ले लो, आपका स्कूल हमने अरेंज कर दिया है, आप भाषा सीखो। क्योंकि मैंने बाबा को क्या बोला था, मुझे भाषा नहीं आती। तो बाबा ने कैसे वहां उस देश में एक युगल को विचार दिया और वो आए सेंटर पर 5 मिनट के लिए, बहन जी ये पैसे ले लो। मैंने कहा क्यों लूं भाई मैं तुम्हारे पैसे, कहा आपको भाषा नहीं आती है ना यहाँ की, ये सीखनी है आपको। मैंने कहा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहा हमको प्रेरणा मिली है, हमको किसी ने टच किया है। ये तो फिर मेरे को समझ आया, अच्छा वो बाबा ने मेरे से पूछा था, मैंने सच्ची बताया था, फिर बाबा ने उसको बताया और वो कैसे ढूंढ के आया और वो हमको देके गया और स्कूल भी बंदोबस्त करके गया, फिर मैं जाके सीखी। है ऐसे अनुभव आपको भी है, बिंदु बनकर हम बाबा को याद करते हैं, जो भी दिल की बात है बाबा को बताते हैं, तो बाबा सूक्ष्म रूप से किसी न किसी को निमित बना देता है। आप कितना भी सोचो आपका मन चलता रहेगा, कैसे होगा कैसे होगा, क्या होगा, क्यों क्या में, लेकिन यदि आप बाबा को याद करेंगे, बाबा को अपने मन की बात बताएंगे, दिल की बात बताएंगे, तो ठीक जगह पहुंचेगी ना। और बाबा को पता है ना ये मेरा ब्राह्मण बच्चा है, और वो मदद तो करेगा ना, किया है बाबा ने आप सबको मदद है ब्राह्मण जीवन में, हाथ खड़ा करो जिसको ये मदद मिली है, बाबा की मिली है ना, तो वो जो मदद है आप लिखते जाओ अपनी डायरी में, कितना बाबा ने हमारे जीवन में इतनी मदद की है, हम भूल सकते हैं बाबा को क्या। तो बाबा के लिए ताली बजाओ, हाँ, जो इतना बाबा है बिंदु और कितनी सेवा कर रहा है इतने ब्राह्मणों की, एक एक को बाबा मदद कर रहा है। लेकिन हमारा जो संबंध चाहिए बाबा के साथ वो सच्चे दिल का चाहिए, अंदर से हमारा सच्चा भाव होगा तो वो बाबा पिकअप करता है, वो ले लेता है बाबा। यदि मेरे अंदर थोड़ा स्वार्थ होगा वो बाबा नहीं करेगा। हाँ, मान शान या वहां की बात कोई मन में है वो बाबा नहीं लेता है, लेकिन हमारे अंदर जो बहुत सूक्ष्म सच्चाई है वो हमारी बाबा को मिल जाती है और वो बाबा हमारी पूरी कर देता है। तो ऐसे ऐसे सारे दिन में आप अपने मन बुद्धि को खोल के रखो कि कहां कहां बाबा मेरे को, हाँ एक्सपेरिमेंट करो, कहां कहां बाबा ने मेरे को मदद की है। मैंने तो खाली बोला ही था बाबा को और बाबा ने आकर के किसी ना किसी के थ्रू, कोई ना कोई व्यक्ति आएगा आपके सामने, मदद मिलेगी। तो वो मदद की पॉइंट्स लिखते जाओ बाबा के साथ। तो ये जो तीसरा बिंदु है वो कौन सा है, कौन सा है, ड्रामा। तो ब्रह्मा बाबा क्यों बना परफेक्ट, उसको कोई व्यर्थ विचार नहीं आया, कारण यही था उसने ड्रामा को बहुत यूज किया है, बहुत बहुत इस लेसन को अपने जीवन में यूज किया है ब्रह्मा बाबा ने। तो 5 C लिख लो, 5 C, क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्रिटिसाइज समझते हैं, हाँ, किसी की टीका टिप्पणी करते हैं ना, ये ऐसा है वैसा है, टीका टिप्पणी करते हैं, कोई बात है हम बोलना शुरू कर देते हैं, कमेंट्स नहीं देने, टीका टिप्पणी नहीं करनी है, किसी की करेक्शन नहीं करनी है, करेक्शन समझते हैं, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, करेक्शन नहीं दी बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, और क्वेश्चन नहीं किया बाबा ने, क्वेश्चन नहीं करता था बाबा, क्योंकि बाबा को पता है हर एक का अपना पार्ट है। तो बाबा ना क्यों क्या में गया, ना टीका टिप्पणी में गया, ना किसी की तुलना की, ये इसे अच्छा है वो अच्छा है, नहीं, तो क्रिटिसाइज भी नहीं किया, कंपेयर नहीं किया, कोटेशन कोई भी कुछ भी कमेंट्स नहीं दिए बाबा ने। जो सीन बाबा के सामने आता था बाबा ड्रामा की ढाल पर पक्का रहता था, इसलिए उसको व्यर्थ विचार नहीं आते थे। हम वो ड्रामा की जो वो रेल है ना, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन ठीक ठीक चले तो पहुंच जाएगी ना मंजिल पर, और हम उतर जाते हैं, क्यों इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम इसमें चले जाते हैं तो हम मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का ये एक लेसन जो ड्रामा का था बहुत पक्का था, जरा भी शब्द बाबा ऐसा नहीं बोलता था, सोचता भी नहीं था व्यर्थ, तो इसलिए तो परफेक्ट बना ना, समर्थ बन गया ना। तो इसलिए जो तीसरा लेसन हमको बाबा ने दिया कौन सा, ड्रामा, और ड्रामा की पटरी पर रहना। बाबा कहते हैं ड्रामा की पटरी पर रहना माना ये पांच बातों पर ध्यान देना, कौन कौन सी, किसी की तुलना किसी से नहीं करनी, किसी की टीका टिप्पणी नहीं करनी है, किसी को हम बैठ करके कोरेक्शन देते रहे, इसको ऐसे सुधारना चाहिए, इसको ऐसे इंप्रूव करना चाहिए, इसको ऐसे, वो भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं ये ऐसा क्यों करता है, इतना अपने मन पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, इतना रूलिंग पावर चाहिए, तब जाकर के हम समर्थ बन सकते हैं। क्योंकि मेन बात है हमारी मन और बुद्धि की, मन में ही तो चलते हैं ना विचार, और मन में ही हमारे बुद्धि में निर्णय होते हैं, और यदि यही विस्तार में जा रही है मन और बुद्धि, कहाँ कहाँ भटक गए हम, तो कहाँ है हमारी निर्णय शक्ति, कहाँ है हमारी रूलिंग पावर। जो हम इतना योग करते हैं तो योग का मतलब क्या है, दो बातें आप समझ लो, योग का मतलब है कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हो, हम कंट्रोल करना सीखें अपने मन के विचार को, उसको ठीक दिशा देते जाएं। हाँ बातें तो आएंगी, शरीर के कोई बीमारी आ जाएगी, कोई धन की समस्या आ जाएगी, संबंधों की समस्या आ जाएगी, कहीं आजकल देखो एरोप्लेन्स की समस्या है, वॉर की समस्या, कितनी बातें चल रही हैं दुनिया में, ये तो आएंगी, लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक निर्णय करता चले, ताकि हमारे अंदर व्यर्थ ना हो, हम समर्थ बने। इसलिए बाबा कहते हैं तीन बिंदु को हमेशा याद रखना, मैं कौन हूं, हाँ आत्मिक ऊर्जा हूं, शुद्ध सोचने वाली ऊर्जा हूं, शक्तिशाली ऊर्जा हूं, दयावान ऊर्जा हूं, ये है आत्मा। आत्मा मतलब ऊर्जा, आत्मिक शक्ति, जैसे वो न्यूक्लियर पावर होती है, ये सोल पावर है, ये हमारे विचार शक्ति है। जो एक शक्तिशाली हो, स्वच्छ हो, पावरफुल हो, उसमें ऐसे वैसे बात नहीं हो ना। एक बार हम लोगों ने दादी गुलजार से प्रश्न पूछा था, एरोप्लेन इतनी दूर तक जाता है क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल होता है उसमें कोई कंकड़ नहीं होता है, यदि होगा तो कहां जाएगा। तो ऐसे ही आज हमारा मन है, हम अच्छी भावना रखते हैं दूसरे के प्रति, हाँ ये अच्छी आत्मा है, लेकिन इसको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो हमारा मन ठीक सोच रहा था फिर कहां जाकर के भटका, उसके अवगुण को देख लिया, तो हमने तो उसको अच्छी वाइब्रेशन ऊर्जा दे रही थी, लेकिन चला कहां गया, कहां चला गया है, बुराई में। तो कैसे हमारे ऊर्जा उसको पहुंचेगी, पहुंचेगी पहुंचेगी, हाँ ऐसे हम कितनी आत्माओं के साथ कर लेते हैं, अरे ये अच्छा है सहयोग दे रहा था, दो घंटे इसने अच्छा सहयोग दिया, अभी पता नहीं सो रहा होगा, ऐसे बोल देते हैं किसी के लिए, हैं गलत सोच के गलत बोल देते हैं। तो हमारी ऊर्जा जो अच्छा सोच रही थी उस आत्मा के लिए, वो पहुंचते पहुंचते और दिशा में चली गई। तो इसलिए हमारी जो भावना है एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करती है। हाँ, तो इसलिए दादी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। दादी ने कहा जैसे एक माला होती है ना, माला के दाने होते हैं, सारे दाने इकट्ठे हों तो माला सुंदर लगती है। यदि यदि हर एक आत्मा दाना है, बाबा का बच्चा, यदि उसके अंदर खुदरापन है, खुदरापन समझते हैं, रफनेस, हाँ, दूसरे के अवगुण देख लेते हैं, ये रफनेस है, खुदरापन है। यदि हमारी भावना और आत्माओं के लिए अच्छी नहीं होगी, शुभ नहीं होगी, तो वो दाना दूसरे दाने से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। धागा जाएगा अंदर क्या? नहीं जाएगा, अटक जाएगा। हाँ, तो हम आत्माएं दूसरी आत्माओं के साथ जब हम आते हैं तो बाबा कहते हैं हमेशा अपने को क्या सोचो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। और किसको देख रही हूं? किसको देख रही हूं? श्रेष्ठ आत्मा को देख रही हूं। किससे बात कर रही हूं? मैं एंजल हूं तो दूसरा भी फरिश्ता है, एंजल है। मैं तपस्वी हूं तो दूसरा भी तपस्वी है। तो इतना सूक्ष्म जो भावना है उस आत्मा के लिए वो पहुंचेगी जब हमारे अंदर कोई भी प्रकार की जो अवगुण है, जो खुदरापन है, जो रफनेस है, वो खत्म होती जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने को क्या समझो, मैं मान समझो, और क्या समझो, बिंदु आत्मा हूं। तीसरा बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में हम रहते तो हैं और हम क्या हैं, एक्टर्स भी हैं। एक्टर समझते हैं ना, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छी एक्टिंग करने के लिए। ऐसे कोई एक्टर थोड़ी बन जाते हैं, हाँ, बहुत मेहनत होती है एक्टर बनने के लिए। उनको अपनी भावना, अपना सोच, अपनी वृत्ति, अपना बोल, अपना शरीर, सब प्रकार की ट्रेनिंग होती है। ऐसे थोड़ी जाकर के वो दुनिया के आगे परफॉर्म कर सकता है। हाँ, दुनिया में भी एक्टर बनने के लिए मेहनत है, और यहाँ देवता बनने के लिए तो बहुत मेहनत तो है, लेकिन बाबा ने सहज कर दिया हमारे लिए। कितना सहज कर दिया, हाँ, कि अपनी स्मृति में रहो और आगे बढ़ जाओ। कितना अच्छा बना दिया बाबा ने, स्मृति ही हमारी ताकत है। मैं बिंदु हूं ये स्मृति है, नहीं तो ये शक्ल याद रहती है मन में, मेरा चेहरा याद रहता है ना मन में। अब मन को उससे भी दूर ले जाना है, चेहरा भी याद ना रहे। इतना दूर तक हमको अपने प्रकंपन बनाने हैं। योग का मतलब तो यही है ना, प्रकंपन बनाना। जितना आप शुद्ध प्रकंपन बनाएंगे उतना औरों को पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? यदि देह के अभिमान के होंगे, व्यर्थ होंगे, वो तो नहीं पहुंचने वाले। हाँ, तो इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं अभी हम बच्चों को क्या क्या करना है। अपने को मेहमान समझना है ताकि न्यारे प्यारे रह जाएं, और दूसरा तीन बिंदु याद करने हैं। हाँ, बाबा जो इतनी ऊंच हस्ती है इस दुनिया की, हाँ, वो आकर के इस धरती पर हम सबको इतना ऊंच बना रहे हैं। आप सब ऐसा महसूस करते हैं कि कितनी ऊंची हस्ती है शिव बाबा, इतनी बड़ी हस्ती दुनिया की, और वो धरती पर आकर के, हाँ, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो जब बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बोला था ना, साक्षात्कार कराया था सत्युग का, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला था शिव बाबा को, बाबा ये कैसे बनाऊं सत्युग? बाबा ने कहा मेरे पास कुछ है क्या परमधाम में, है शरीर भी नहीं है बाबा के पास। बाबा के पास मोबाइल है क्या, व्हाट्सएप है क्या, ऑफिस है क्या, है कुछ बाबा के पास? शरीर भी नहीं है, वो कैसे काम करता है बाबा? बाबा टच करता है, हाँ, बुद्धि को, मन को अच्छे विचार देता है। तो तुम भी दो, यही तो है प्रक्रिया, यही तो है बाबा ने खोला रहस्य कि इतनी बढ़िया चीज आपको मिली हुई है। क्या क्या मिला हुआ है फ्री? क्या फ्री मिला हुआ है? हम अपने मोबाइल में देखते रहते हैं कितनी चीजें फ्री मिलती हैं, उसको यूज करते हैं हम। तो हमको बाबा ने इस दुनिया में क्या क्या दिया हुआ है फ्री? संकल्प और समय। संकल्प की हम बजट करें, इकोनॉमी करें, समझते हैं संकल्प, जो भी हमारे संकल्प चलते हैं, धन का हम बजट बनाते हैं, इतना खर्च ये करना है वो करना है, और संकल्प का हम बजट बनाएं, व्यर्थ विचार नहीं करने लेकिन समर्थ करें। बजट बनाना आता है सबको, धन का तो बना लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, समय को कैसे यूज करना है, लेकिन संकल्पों का बजट बनाओ, इकोनॉमी करो। जिस बात में एक बार सोचना है, एक संकल्प करना है, उतना ही करो। बाबा ने कहा था अभी एक मुरली में, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बाबा ने कहा आपको तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो हर संकल्प, हर घड़ी, हर क्षण आप अपने को समर्थ समझो, मतलब वेस्ट नहीं करने दो उसको, व्यर्थ में जाने ही नहीं दो, तभी आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो संकल्प का बजट माना कि हर संकल्प पर ध्यान, अभी यहां तक तो हम कोई नहीं पहुंचा है, नहीं चले हो जाते हैं व्यर्थ संकल्प, एक घंटे का तो कर सकते हैं या नहीं, हर घंटे में कौन करता है, जब रिकॉर्ड बजता है ना हर घंटे में शांति का, आप रुक करके तीन बातें सोचा करो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाबा के साथ हूं और विश्व सेवा पर हूं, बस इतना ही सोचना है आपको, कितनी बार बजता है रिकॉर्ड, हाँ 8 बार तो बजता होगा, 10 बार, तो हर घंटे आपको क्या सोचना है, मैं कौन हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं किसके पास हूं, शिव बाबा के पास हूं, मैं क्या कर रही हूं, बाबा के साथ मिलकर के विश्व की आत्माओं को शांति का दान दे रही हूं। तो आपको ये 1 मिनट भी सेवा जरूर करनी है हर घंटे में, जब रिकॉर्ड बजे बातें नहीं करनी किसी के साथ, या कुछ काम मेरे को ये करना है, अरे 1 घंटे के बाद उसको मिलना है, ये फिर ऑर्डिनरी हो जाएगा। लेकिन ये जो बाबा याद दिला रहा है हर घंटे मुझे याद करो, वो ये याद दिला रहा है कि तुम कौन हो, किसके पास बैठे हो और क्या करना है। हमको ये दादी गुलजार ने बहुत अच्छा बताया था कि आप 10 बार पानी पीते हो सारे दिन में, तो 10 बार यही सोचो, मैं कौन हूं, मैं किसके पास हूं और मुझे क्या करना है, मैं बाबा के पास हूं और मिलकर के बाबा के साथ आत्माओं को शांति का दान दे रही हूं। कितना अच्छा संकल्प है, हाथ खड़ा करो जो करेंगे ये हर घंटे, इतना अच्छा चांस होता है सेवा करने का, हाँ 1 मिनट ही तो करना है, हर घंटे करना है, तो बाकी जो ना 59 मिनट्स हैं उसके ऊपर असर आएगा ना, व्यर्थ नहीं चलेंगे, अच्छे विचार चलेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छी, इतने ऊंचे लेवल पर आप चले गए, बाबा की ऊर्जा प्रकंपन ले रहे हो आप और दे रहे हो, तो आप नीचे कैसे अभी जाओगे, इतने ऊंचे प्रकंपनों में ही तो रहोगे। इसलिए बाबा कहते अपने प्रकंपन सेवा के बनाओ, बाबा की याद के बनाओ। तो ये हम हर घंटे प्रैक्टिकल करते रहें समर्थ बनने के लिए, और साथ साथ में समर्थ बनने के लिए हम रोज बाबा को अपना चार्ट दें। चार्ट समझते हैं, हम लिखते हैं, कहीं नहीं लिखते हैं, तो आप 3 मिनट भी बैठ करके रात को बाबा को याद करके सारे दिन का आप क्या करो, बाबा को बताओ आज मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है और मुझे क्या अंदर इम्प्रूव करना है, सुधार करना है। आ करेंगे ये काम, व्यर्थ से बचना है ना, तो समर्थ के लिए बाबा बार बार कहते हैं ना मुरली में, बच्चे चार्ट कर लिखो। तो आप लिखते नहीं तो कम से कम यहां मन में 3 मिनट शांति में बैठ के हम बाबा को अपना बता दो, बाबा खुश हो जाएगा कि मेरे बच्चे ने पालन तो किया मुरली का, आप लोग करेंगे ये सब, हाँ, समर्थ बनने के लिए युक्तियां हैं, प्रैक्टिकल हैं ये। हर घंटे बाबा के साथ विश्व सेवा, दूसरा हर रोज 3 मिनट क्या करेंगे, हाँ, बाबा को अपने अंदर का थोड़ा बता दो कि आज मेरा सारा दिन कैसे गया, व्यर्थ चला, समर्थ चला, अटेंशन दिया नहीं दिया, कहाँ गया था मेरा मन, हाँ, आप उसको कनेक्ट करो, नहीं तो मन तो कहाँ कहाँ चला जाएगा, सारा दिन घूम के आएगा, हाँ, फिर तो बाबा को याद नहीं कर पाएंगे हम, गति ऐसी तेज है मन की, कहाँ कहाँ चली जाती है मालूम ही नहीं पड़ता है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, बातें में लग गए, वो देखने में लग गए, आजकल का अट्रैक्शन तो फोन ही तो है, हाँ, सभी एक उसको खिलौनों को लेके बैठ गए हैं, बिजी हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत रिफाइंड टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की, माया की पंप शो है, हाँ, तो सब आत्माएं फंस जाती हैं, तो इसलिए बाबा हमको और भी सुपर टेक्नोलॉजी की बात बता रहे हैं, इतना गॉड जो इतनी प्योर शक्ति है संसार में परमात्मा शिव बाबा, उसको याद ही करना है, हाँ, कोई हाथ में लेना ही नहीं है टेक्नोलॉजी, याद करना है, तो उसकी याद से क्या होगा, प्रकंपन बनने शुरू हो जाएंगे, तो जितने आपके अंदर शुद्ध प्रकंपन आते जाएंगे और वो वातावरण को शुद्ध बनाएंगे, और जो आत्माएं आपके साथ आपके ऑफिस में काम करते हैं, घर में रहते हैं, पड़ोसी हैं, जहां जहां प्रकंपन जाते रहेंगे उनके दिलों को भी वो शांति का दान, शांति की फीलिंग्स देते जाएंगे। है तो बहुत बढ़िया चीज योग, आप सबको पसंद है योग, हाँ, योग का मतलब क्या है, प्रकंपन बनाना, हाँ, ये ज्ञान है, ज्ञान मीन्स क्लेरिफिकेशन, आपको स्पष्टता मिल रही है, फिर आप योग में जब बैठते हैं तो आपका मन जो है सोल कॉन्शियस हो जाता है, तब प्रकंपन बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप सारे दिन में कितने बनाते हो प्रकंपन, 24 घंटे में 18 घंटे बना सकते हो, 10 घंटे 8 घंटे तो करके ही जाना, हाँ, बाबा 8 घंटे के लिए बोलते हैं ना, 8 घंटे तो आप करना, आप आए हुए हो ना इतनी दूर से, तो एक दिन सारा दिन शांति में रहो, किसी से नहीं बोलना, खाना भी बहुत कम खाना उस दिन, लेकिन 8 घंटे योग करना है, आप भले क्लास करो लेकिन हमारे मन की कनेक्शन किसके साथ हो, बाबा के साथ, बाबा को याद करना है ताकि प्रकंपन बने और वो मेरे अंदर चला जाए और वो इकट्ठा हो जाए। इसलिए तो आते हैं, देखो विदेशी क्यों आते हैं इतने हजारों 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 पैसा खर्च करके, आपके तो हजारों 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 नहीं खर्च हो रहा, उनका तो हजारों हजारों खर्च होता है, वो क्यों आते हैं, ये बाबा के शुद्ध प्रकंपन, प्यार के प्रकंपन, दया के प्रकंपन, ये जो प्रकंपन है शिव बाबा के, हाँ, वो महसूस करने आते हैं, वो लेने आते हैं, अनुभव करने आते हैं, वो तो दुनिया में तो अभिमान है ना, बहुत सारा बिजनेस ही अभिमान का है, हैं? इतना कुछ चल रहा है दुनिया में, कितने बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कौन सी हैं, दुखों के प्रकंपन, और यहाँ बाबा के बच्चे कहाँ बैठे हैं, हाँ, मधुबन में कौन से प्रकंपन में बैठे हो आप सभी, हाँ, बाबा के सुरक्षित स्थान पर जहां पर आत्मा को राहत मिल रही है, मिलती है आपको राहत, हाथ खड़ा करो जिनको मिलती है, मिलती है ना, बाबा की ये प्रकंपन आपको मिल रहे हैं कि आपके मन में जरा भी डर का वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, यदि नहीं आ रहा है तो आप सुरक्षित है ना, इसलिए ये प्रकंपन आप जितना इकट्ठा कर सको उतना लेके जाना। तो अभी मैं आपको अपना अनुभव सुनाती हूँ, हम लोग जापान में रहते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, वहाँ पर भी है, फिलीपींस में भी, तो वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत आते हैं, हाँ, हम लोग एक बार खाना खा रहे थे, अर्थक्वेक आ गया, फिर हम खाना को छोड़ देते हैं, फिर बाबा की याद में एकदम सन्नाटा हो गया, जिसे सन्नाटा हो जाए ऐसी वाली याद, डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन बाबा को याद करना कि कोई भी विचार हिले नहीं, इधर से उधर ना हो, वो बाबा की याद। कहां जाऊं, क्या होगा, कैसे होगा, कोई भी विचार नहीं करना है, आपको बाबा की याद में रहना है। वो वाला विचार हम जो बॉडीलेस कहते हैं ना बाबा, अशरीरी अवस्था का, मन इधर उधर खिंचे नहीं, ना डर में ना कंफ्यूजन में, वो वाला। तो वहां जब अर्थक्वेक आया था, बहुत आते हैं, रात को सोए होते आ जाते हैं, खाना खा रहे हैं आ जाते हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं आ जाते हैं, किसी टेलीफोन कर रहे हैं आ जाते हैं, कभी भी आ सकता है, है? तो उस समय हम चेक करते हैं अंदर डर तो नहीं है, डर ना लगे। लेकिन जरूरी चीज तो करनी है, क्योंकि वहां पर तो जरूरी बता देते हैं, वहां पर लिस्ट बनी हुई होती है, वो दे देते हैं कि अपनी शरीर की कौन सी चीजें तैयार रखो, वो तो तैयार है, पानी भी तैयार है, खाना भी तैयार होता है, वहां पर मिल जाता है, ये सब अर्थक्वेक के लिए बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। पानी 5 साल का मिल जाता है, 5 साल तक चलता रहे, हाँ रख दो, फिर आपको फिक्र नहीं करनी है। चावल मिल जाता है बना बनाया, खाली उसको गर्म पानी डालना है, वो बन जाएगा है? ऐसी चीजें मिलती हैं, टेक्नोलॉजी है ना वहां, तो वो अर्थक्वेक के लिए तो तैयार है, लेकिन आत्मा के अंदर डर है ना, उसके लिए तो वो तैयार नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, बाबा की याद, क्योंकि बाबा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, जब हम उसको याद करते हैं तो उसकी याद के जो वाइब्रेशन है वो भी अविनाशी है। वही तो हमारा सच्चा आहार है ना, जो बाबा दे रहे हैं हमको। बाहर का जितना भी पड़ा होगा, क्या पता कौन खाने वाला है नहीं खाने वाला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा को जो बाबा दे रहा है, वो दे रहा है सुरक्षा के विचार। मतलब है कमाल बाबा की, कितना कहां कहां बाबा हम आत्माओं को सुरक्षा कवच पहना करके बैठे हैं। आप अनुभव करते हो बाबा की सुरक्षा, कहीं पर भी हैं, सड़क पे हैं, एरोप्लेन में हैं, ट्रेन में हैं, हमारे मन में क्या रहे, बाबा की याद। तो हम लोग वही करते हैं वहां पर, डर में नहीं, कंफ्यूजन में नहीं, बाबा की याद, जिससे हमारे अंदर सुरक्षा हो। तो जब अर्थक्वेक हुआ तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ, पहली बार, अरे तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, पहली बार देखा था, बहुत जोर से था, तो मैंने बाबा को याद किया, मैं बाबा को याद किया, फिर सोचा अभी क्या क्या करना है। फिर हम बाहर गए देखने के लिए, आग लगी हुई है, सड़कें फटी पड़ी हैं, गैस है, पॉइजन है, लोग चिल्ला रहे हैं, हैं? और हम लोगों को क्या याद होता है, मुरली, बाबा आपने मुरली में कहा था, हैं? मुरली याद आती है ना उस समय, होता है ऐसे, बाबा ने हमको इतना तैयार किया हुआ है, डरो नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा अनुभव है ना। तो एक बहन थी, फिलीपींस में वो हुआ, फ्लड आया है, उनके घर तक पहुंच गया, उनके घर तक पहुंच गया, तो उसको तैरना पड़ा, तो तैरते हुए उसकी गाड़ी भी तैर रही थी उसके साथ, हैं, सांप भी थे, हैं, और भी कुछ था। तो वो कहती है, तब मेरे को मुरली याद आई, बाबा सच्ची कहता है, जो मुरली में बाबा बात करते, अरे वो सच्ची मुरली है। उसके बाद वो पक्की ब्राह्मण बनी, कई ब्राह्मण मुरली सुन लेते हैं, हाँ, भक्ति के हिसाब से, लेकिन जब प्रैक्टिकल कोई बात आती है ना जीवन में, तो रियलाइजेशन होती है ना। तो वो जब उसके साथ हो रहा था, हाँ बाबा कहता था मुरली में ऐसी ऐसी बातें आएंगी, अरे आज मेरे साथ बीत रही हैं, अरे मुरली सच्ची है या नहीं। तो इसलिए बाबा कहते, जो मैं बता रहा हूं, हाँ, ड्रामा की भावी भी विनाश के बारे में बाबा ने कितना त्याग किया है, वो आप रियल समझो, ऐसे नहीं सोचो पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ये नहीं, आप अपनी रियलाइजेशन महसूस करते रहो, हाँ, जो भी हो रहा है मेरे अंदर बाबा की याद है, ये बहुत पक्का रखना है, तब भी जाकर के बाबा आपको मदद करता है। ओम शांति। अभी थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे, फिर सुधा दीदी आएंगे, उनका भी क्लास है अभी, तो अभी दो तीन मिनट हम कहां जाएंगे, बाबा के पास। परम धाम में सोने नहीं जाना, अभी 2-3 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे और बाबा के प्रकंपन महसूस करेंगे।